पंडित भरत भाई जी। कंजी स्वामी का प्रवचन।
दो के भेद करने की जरूरत नहीं है। तो ये द्रव्य में जो जितनी जितनी पर्याय प्रकट होके विलीन हो गई, जितनी जितनी पर्याय अभी तक प्रकट होके विलीन हो गई, व्यय हो गई, वो सब द्रव्य में गई। और अभी जो भविष्य में प्रकट होने वाली है, भविष्य में जो जो प्रकार की पर्याय प्रकट होने वाली है, वो सब अभी द्रव्य में निमग्न है। इधर ये काल का प्रवाह जो है वो ऊर्ध्व प्रवाह है, ऐसा ऐसा वो उसमें ऊर्ध्व प्रवाह तरीके वो वर्तता रहता है। अभी अभी इधर तक काल का प्रवाह आया तो ये जो पर्याय है तो वो सब इसमें जितनी भूतकाल की पर्याय प्रकट होके विलीन हो गई वो द्रव्य में निमग्न हो गई, और अभी जो पर्याय भविष्य में प्रकट होने वाली है वो भी द्रव्य में निमग्न रूप से है। तो जितनी पर्याय प्रकट होके व्यय हो गई वो द्रव्य में जाती है, और जितनी पर्याय जो भविष्य में आने वाली है वो द्रव्य में से आती है, इस प्रकार की बात चलती है। तो अभी ये प्रश्न खड़ा होता है कि यदि ऐसा अपना दृष्टि का जो विषय है वो तो नित्य स्थिर ध्रुवपिंड है, उसमें तो कुछ परिणाम का या कुछ फेरफार होता ही नहीं है, तो यदि इसमें से पर्याय आती है और इसमें जाती है तो फेरफार करने लगता है, तो वो एकदम जो अपना निष्क्रिय कुटस्थ भाव जो है वो ऐसा का ऐसा कैसे रहेगा, तो उसको दृष्टि में कैसे लेंगे, उसमें स्थिरता कैसे करेंगे, तो ये प्रश्न खड़ा होता है। काल के प्रवाह अनुसार भावी योग्यता वाली पर्याय स्वकाले द्रव्य में प्रकट थती जाए, बीजा समय व्यय थी द्रव्य में भूतकाल योग्यता रूपे जती जाए, रीते द्रव्य में पर्याय आए जाए एम कहू व्यवहार है। इसमें से द्रव्य में से पर्याय आती है और फिर द्रव्य में चली जाती है, अपना जो द्रव्य है उसमें जितनी जितनी भी पर्याय गई होगी वो द्रव्य में गई, और अभी भी जो भी पर्याय आने वाली है वो द्रव्य में से आएगी, ऐसा वो द्रव्य पर्याय के साथ संबंध है। तद्दन द्रव्य जुदा है और पर्याय जुदी है, वो स्वतंत्रपणे उत्पन्न होती रहती है, और उसका द्रव्य के साथ कुछ संबंध नहीं है, ऐसी दो के बीच में भिन्न भिन्न ऐसी भिन्नता की व्यवस्था नहीं है, एक द्रव्य और दूसरे द्रव्य के साथ ऐसा कुछ भी संबंध नहीं है। मगर द्रव्य और पर्याय में दृष्टि के विषय की अपेक्षा से देखा जाओ तो पर्याय स्वतंत्र सत्य है और सर्वथा भिन्न है, वो द्रव्य को दृष्टि में लेना है वो बात सत्य है, मगर उसका कुछ संबंध ही नहीं है, ऐसा नहीं है। वो जो जो प्रकार की पर्याय प्रकट होती है वो उसमें से द्रव्य में से आती है और व्यय होकर फिर द्रव्य में चली जाती है, तो ये ऐसी ऐसा उसमें प्रश्न हो सकता है कि ये पाणिनि भाव फिर कैसे रहा, ऐसा का ऐसा जो है वो भाव परिणामी भव पारिणामिक भाव, जो ऐसा का ऐसा रहने वाला भाव है वो पारिणामिक भाव है, तो इसमें पर्याय आती है और जाती है ऐसा जो यदि अपन सोचे गुरुदेव की ऐसी शैली है तो वो कहते हैं कि पर्याय द्रव्य में से आती है और फिर द्रव्य में चली जाती है, तो उसका वो कैसे है, तो उसका खुलासा पूज्य गुरुदेव सिंह ने ही किया है, मैं वो आपको बता दूं। ये जो विषय है वो पूज्य गुरुदेव सिंह कभी और भी गाथा चलती हो तो उसमें वो कभी कभी ले लेते थे, तो गाथा 14 का प्रवचन है तो उसमें भी उन्होंने ये बात ली है। ऐसे समयसार सिद्धि भाग 2 पेज नंबर 173, ऐसे एक संयोग संभाव की पर्याय एक समय की स्थिति है, इसमें जो संयोग संभाव प्रकट होता है उसकी एक समय की स्थिति है, दूसरे समय चली जाती है तो कहां जाती है, अंदर में, तो अंदर में एक संयोग संभाव की पर्याय रही नहीं, जब वे होके जब अंदर चली गई तो संयोग संभाव रूप से नहीं आई, अंदर में गई तो पारिणामिक भाव की दशा हो गई, ये तो परम पारिणामिक भाव है, अंदर ये जो वे होके चली गई तो ये तो परम पारिणामिक भाव है, तो अंदर में ये संयोग रूप से नहीं दीजिए माने, उसकी योग्यता है जो भूतकाल की पर्याय है उसकी योग्यता है, मगर ये संयोग संभाव रूप से नहीं है, जब व्यक्त थी तो संयोग संभाव रूप से थी, मगर अंदर गई तो पारिणामिक भाव उससे हो गई। एक साई केवल ज्ञान की पर्याय एक समय रहती है, दूसरे समय व्यय होती है, तो गई का अंदर, यहां तो क्षायिक भाव की थी अंदर गई तो पारिणामिक भाव हो गई, इधर क्षायिक भाव की थी अंदर गई तो पारिणामिक भाव से हो गई। श्रोता अंदर में पर्याय रूपे कहां रही, द्रव्य रूप हो गई, पर्याय रूपे नहीं गुण रूपे हो गई, ऐसा एक जवाब दिया। फिर और श्रोता ने पूछा कि पारिणामिक भाव में फेरफार थी जाए, अभी रीते जो पर्याय द्रव्यमांथी आवे छे द्रव्यमां जाए छे, इस प्रकार से यदि आप उसको प्रतिपादन करोगे तो उसमें तो फेरफार हो जाएगा, तो गुर्दे में जाती है, कुछ फेरफार नहीं, निश्चय में तो फेरफार नहीं, निश्चय जो है अपना परम कारण है वो तो ऐसा का ऐसा ही त्रिकाली परमात्मा द्रव्य रूप से ही विद्यमान है। व्यवहार ऐसा कहने में आता है कि पर्याय अंदर से आती है निकली है ने पर्याय अंदर गई, ये बता भेद नहीं से कथन है। गजब बात है भाई, ये द्रव्य ना स्वभाव, द्रव्य का स्वभाव अचिंत्य है, इस प्रकार का खुलासा किया है। इसमें वो द्रव्य में आती है और द्रव्य में जाती है, ऐसा जो उनका प्रतिपादन सही है वो क्या क्या कहना चाहते हैं कि वो पूरे द्रव्य की बात करते हैं, बताना है परम पारणम भाव। दृष्टि प्रधान दृष्टि का विषय ही अभी जो बोल चलेंगे वो दृष्टि प्रधान दृष्टि के विषय की बात चलती है। आज सुबह में गुरुदेव ने दृष्टि प्रधान और ज्ञान प्रधान से सब स्पष्टता की थी, मगर अभी जो बात चलती है ये अव्यक्त के बोल की, वो सब दृष्टि प्रधान दृष्टि के विषय की, जो दृष्टि का विषय तरीके प्रसिद्ध है उसकी ही बात चल रही है। तो इसमें जो है तो बात इसकी करनी है जिसमें सब पर्याय निमग्न है, भूत और भविष्य की पर्याय निमग्न है, बात उसकी समझानी है, मगर वो पर्याय जो गई वो अंदर गई और जो आती है वो अंदर से आती है, इस प्रकार की बात बताते हैं। और उसको अभी बोला कि व्यवहार नहीं है, तो ये प्रतिपादन ऐसा क्यों करते हैं कि वो प्रमाण से करते हैं। जो पर्याय जो प्रकट होती है वो अंदर से आती है और अंदर जाती है, इस प्रकार की जो कथन पद्धति है वो प्रमाण ज्ञान से करते हैं। प्रमाण ज्ञान वाणी पूरा द्रव्य में, पूरा द्रव्य में से आती है और पूरे द्रव्य में ही चली जाती है। उस टाइम में वो जो अंदर से आती है और अंदर जाती है उस टाइम ये द्रव्य की बात नहीं कर रहे हैं। दृष्टि का विषय जो परम पारणम भाव है, अव्यक्त द्रव्य है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, मगर जब भी वो कथन पद्धति में दोनों साथ ही चलते हैं, ज्ञानी को ये सुधरने का विषय और प्रमाण ज्ञान का विषय, ये दोनों एक साथ ही चलते हैं। तो एक साथ चलते हैं तो उसका कथन भी कभी कभी इस प्रकार से हो जाता है कि प्रमाण ज्ञान से देखो तो वो पर्याय द्रव्य में से आती है और फिर द्रव्य में चली जाती है, मगर दो की सत्ता भिन्न भिन्न तरीके देखो, द्रव्य पर्यायत्मक दोनों सत्ता को भिन्न भिन्न तरीके देखो और इसी एक भाव को देखो तो वो द्रव्य तो ऐसा का ऐसा ही रहता है, उसमें से न कुछ आता है और न कुछ जाता है, पर्याय स्वतंत्रपणे परिणाम करती है। पर्याय अपने स्वतंत्र क्षणिक उपादान से, अपने स्वतंत्र षट कारक से वो प्रकट होती रहती है, अनादिकाल से वो होती रहती है, जैसा जैसा उसकी योग्यता होती है इस प्रकार से वो परिणाम प्रकट होता रहता है। और द्रव्य का ऐसा का द्रव्य ऐसा का ऐसा ही रहता है, तो फिर द्रव्य में क्या है कि द्रव्य में योग्यता तो है, भूतकाल की जितनी पर्याय वेव के अंदर में गई उसकी योग्यता तो अंदर में पड़ी हुई है और भविष्य में जैसी जैसी प्रकट होगी ऐसी योग्यता तो द्रव्य में पड़ी हुई है, योग्यता नहीं है ऐसा नहीं है, मगर वो पारणम भाव से है, परम पारणम भाव से योग्यता पड़ी हुई है। तो योग्यता जब जो अंदर में पड़ी हुई है परम पारणम भाव में पड़ी हुई वो पारणामिक भाव से है, और जब वो व्यक्त होती है इस अनुसार जिस जिस प्रकार का इधर योग्यता का वो परिवर्तन होता रहता है, जैसे जैसे इसमें से पर्याय व्यय होके वो व्यय हो जाती है तो अंदर में जाती है, तो द्रव्य में क्या होता है कि द्रव्य में तीनों काल की पर्याय निमग्न है, भूतकाल की पर्याय भी निमग्न है, वर्तमान की पर्याय भी उसमें निमग्न पड़े ही है, अंदर नहीं आती है नहीं जाती है ऐसा बोल तो फिर वो तो निमग्न पड़े ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि ये तो वर्तमान व्यक्त पर्याय है और भविष्य की पर्याय की योग्यता भी इसमें निमग्न पड़े अंदर में रही हुई है। तो इसमें क्या होता है, द्रव्य जो है उसमें क्या होता है कि अनादिकाल से जो जो पर्याय इसमें प्रकट होती जाती है और व्यय होती जाती है तो द्रव्य में उसका परिवर्तन होता रहता है। द्रव्य में कितनी पर्याय जो है वो भूतकाल की योग्यता रूप से, इसमें अभी योग्यता ही है, सब योग्यता ही पड़ी हुई है, इसमें उत्पाद और व्यय होता जाता है, इस प्रकार का काल का प्रवाह चलता है। तो जो भविष्य की योग्यता है वो वर्तमान होकर भूत में चली जाती है, तो इसमें भी जो योग्यता है वो भविष्य की योग्यता थी वो वर्तमान योग्यता रूप से होके वो भूत में चली जाती है, क्योंकि ऐसा अपना क्षोषम ज्ञान है तो अपन पकड़ नहीं सकते उस पर्याय को, मगर केवली भगवान तो खुद बराबर जानते हैं कि ये पर्याय उसमें निमग्न है, वो पर्याय इधर व्यक्त हुई और जो पहले की पर्याय थी वो भूतकाल की योग्यता रूप से वो देखते हैं और भविष्य में होने वाली सब पर्याय है वो भविष्य की योग्यता रूप से देखते हैं, तो इसमें जैसे जैसे उत्पाद भी होता जाता है, इस प्रकार का परिवर्तन द्रव्य में योग्यता का होता जाता है। इसका भी प्रवाह चालू है, जैसे उत्पाद भी का प्रवाह चलता रहता है, ऐसा ही उसके साथ में अन्वय अन्वय रूप से रहा हुआ है, वो अविनाभावी रहा हुआ, तो ध्रुव सत्ता है अपना परम प्राणायिक भाव है, उसका भी प्रवाह चलता रहता है। तो इसमें तो उत्पाद भी होता रहता है, जैसे एक कारण सूत्र का प्रवाह चलता है, ऐसे ही इसमें वो निमग्न पर्याय का वो जो पर्याप्त जो प्रवाह है वो भी चलता रहता है। उसमें क्या होता है कि वो जो भविष्य की योग्यता थी वो भी वर्तमान में योग्यता रूप से हो गई, और जो पहले की पर्याय थी वो भूतकाल की योग्यता रूप से होती हो गई। इस प्रकार से इसमें भी परिवर्तन होता रहता है, इसमें उत्पाद भी होता है और इसमें ये योग्यताओं का परिवर्तन होता रहता है। योग्यता माने उस प्रकार का परिणमन होने की उसमें लायकात है। वो द्रव्य में जैसी जैसी पर्याय होने वाली है, जैसे उपशम भाव की उदेक भाव की होने वाली है, उपशम भाव की होने वाली है, शोषम की होने वाली है, क्षायिक भाव होने वाला है, जैसा पर्याय में प्रकट होने वाला है भाव, उस प्रकार की जैसे उदेक भाव प्रकट होने वाला है, तो वो योग्यता तो पारिणामिक भाव रूप से है, मगर उसमें इस प्रकार की योग्यता है कि ये भी जब ये जो पर्याय है वो उसका काल आएगा, निमग्न पर्याय में जो पारिणामिक भाव में उस काल आएगा तब ये औदिक भाव रूप से परिणम जाएगी। ये पर्याय ये है पारिणामिक भाव रूप से, मगर इसमें इस प्रकार की योग्यता है कि जब वो पर्याय प्रकट होगी वो स्वतंत्र उपादान से वो औदिक भाव रूप से प्रकट हो जाएगी, वो जब प्रकट होगी तब वो औदिक भाव रूप से प्रकट होगी। इसमें जो भाव है वो पारिणामिक भाव से है, क्योंकि ये जो प्रकट होगी तो स्वतंत्र क्षणिक उपादान से होगी, मगर उसमें द्रव्यांतर की अपेक्षा रहेगी, द्रव्यांतर की अपेक्षा से वो औदिक भाव होता है, अंदर में कोई अपेक्षा नहीं है, किसी भी द्रव्य की अपेक्षा से अंदर में द्रव्य में कुछ भी नहीं है और किसी की अपेक्षा नहीं है, इसलिए वो तो पारिणामिक भाव रूप से ही रहा करता है। अपना जो परम पारिणामिक भाव है वो उसमें वो भूतकाल की पर्याय जो जितनी भी है वो पारिणामिक भाव रूप से, उसमें कोई भी द्रव्य की अपेक्षा नहीं, मगर जब जब वो प्रकट होके द्रव्य हो गई तो उस टाइम में वो क्षणिक उपादान से प्रकाशन करके अपने अशुद्ध उपादान से वो उदय भाव रूप से परिणाम के व्यय हो गई, और अभी जो प्रकट होने वाली है उसमें कितनी उपशम भाव की होगी, कितनी क्षोभम की होगी, कितनी क्षाई की होगी, तो ये इस प्रकार की योग्यता हो परम परिणाम भाव में, इस प्रकार की योग्यता वाली पर्याय हो निमग्न है।
भरत भाई जरा सा ये थी वाली योग्यताएं और होंगी वाली योग्यताएं दोनों उस परम परिणामिक भाव में
निमग्न है,
किस प्रकार से
उसमें बदलाव भी हो रहा है?
हाँ, बदलाव होता रहता है ना, क्योंकि वो कितनी पर्याय जितनी है ये जीव इस प्रकार से भूतकाल में परिणम गया है, इस प्रकार की योग्यता जो केवली भगवान देखते हैं क्षोभता तो इसे नहीं है, अपने को तो केवली भगवान ने जैसा देखा ऐसा अपने को विश्वास करने का है, अपने द्रव्य स्वभाव का विश्वास करना है, अपने परम पारिणामिक भाव कैसा है उसका वैभव क्या है वो सब अपने को समझना है। अव्यक्त द्रव्य में अव्यक्त जो बता रहे हैं उस भाव को खोलने के लिए सब समस्त पर्याय निमग्न है ऐसा कहके उसका वैभव बताते हैं, जैसे अनंत शक्तियों का वैभव बताते हैं, फिर उसमें कारण सूत्र पर्याय का हरेक गुण के कारण सूत्र पर्याय वो हरेक समय में वर्त रही है, इस प्रकार से इसका वैभव बताते हैं। इसमें ये भी एक वैभव है चैतन्य भाव का, अपना द्रव्य स्वभाव का, परम पारिणामिक भाव का वैभव है कि इसमें जो पर्याय अभी तक परिणाम के व्यय हो गई और भविष्य में आने वाली है वो सब इसमें निमग्न है, ये सब अपने परम पारिणामिक भाव का वैभव है, वो ऐसा उसका वैभव बता के उसकी दृष्टि करानी है।
काली ध्रुव एक रूप कहां रहा हमेशा बदलता रहेगा, एक पर्याय बाहर आएगी बाकी पर्याय उसके अंदर चली जाएंगी, भविष्य की पर्याय बाहर आ जाएगी फिर दूर हो जाएगी, काली ध्रुव एक रूप कहाँ रहा?
नहीं, वो तो एक रूप ही रहता है, वो गुरुदेव का खुलासा
बदल रहा है ना, आप बोल रहे बदलता है,
गुरुदेव ने खुला ऐसा किया नहीं, ये तो काल का प्रवाह अनुसार जैसे वो परम कारण शुद्ध पर्याय है वो वर्त रही है, कारण शुद्ध पर्याय हर एक समय की है वो वर्त रही है, तो इस प्रकार का ध्रुव का प्रवाह है, ध्रुव का प्रवाह जो है वो वर्त रहा है, ऐसे ही अंदर में जो योग्यता है केवली भगवान देखते हैं, तो क्या देखते हैं कि अंदर में जो ये जीव जो है वो अनंत चार गति में परिभ्रमण करके आया है, इस प्रकार से वो केवल भगवान अपने को देखते हैं। अभी सिमंदर भगवान मेरे आत्मा को देखते हैं तो कैसे देखते हैं कि इस मेरा परंपरा भाव कैसे देखते हैं कि ये सब समस्त व्यक्तियां चित सामान्य में चैतन्य की सर्व व्यक्तियों निमग्न है। उत्पाद भी की बात नहीं, अभी उत्पाद भी जो है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं। समस्त व्यक्तियां निमग्न है तो उसमें कैसी निमग्न है, योग्यताएं निमग्न है तो योग्यता हो केवल भगवान श्रीमद भगवान कैसी देखते हैं मेरे आत्मा की कि इसमें ये जो है कि ये भाव इस गति में गया था फिर इस गति में गया था इस गति में वो क्रम सर पड़ी हुई है। जिस जिस भाव से जिस जिस गति में से वो परिणाम के आता रहता है वो उस भाव की क्रम अनुसार वो पर्याय पड़ी रहती है और भविष्य में ये वो जैसा भी मेरा आत्मा परिणमने वाला है चार गति में परिभ्रमण करने वाला है फिर उसके बाद में वो अपना स्वरूप को साध के साधना करके मोक्ष में जाने वाला है तो उस प्रकार की पर्याय अभी निमग्न है। जित सामान्य में चैतन्य की सर्व व्यक्तियां निमग्न है तो कितनी पर्याय तो भूतकाल की रूप से निमग्न है और कितनी पर्याय वो भविष्य की योग्यता रूप से निमग्न है तो केवली भगवान तो बराबर जानते हैं। तो केवली भगवान कैसी जानते हैं कि ये जो भविष्य की पर्याय है ऐसा जानते हैं कि ये बुद्ध की पर्याय ऐसा जानते हैं और क्रम उसका जानते हैं कि नहीं, एक एक का क्रम जानते हैं कि ये देखो ये एक समय पीछे पे होने वाली पर्याय है वो अभी वर्तमान में वो प्रकट हो गई तो उसमें परिवर्तन हो गया कि नहीं, इसमें तो उत्पाद भी होता है ये व्यय हो गए ये उत्पाद हुआ दूसरी पर्याय का जब उत्पाद हुआ तो उसमें जो निमग्न पर्याय है उसमें तो कुछ परिवर्तन होगा कि नहीं और जो व्यय हो गई तो भूतकाल में चली गई जो भविष्य में थी वो वर्तमान में योग्यता रूप से इसमें योग्यता का परिवर्तन होता रहता है और जो पहले वर्तमान में थी पहले समय में वो अभी भूतकाल की योग्यता रूप से है और इधर जो पहले पर्याय थी वो व्यय हो गई दूसरे समय में जो होने वाली थी पर्याय वो उत्पाद रूप हो गई।
परम परिणामिक भाव कैसे होता है औदायिक भाव परम परिणामिक भाव कैसे हो जाता है
नहीं इसमें ये नहीं होता है वो औदायिक भाव तो व्यय हो जाता है वो व्यय हो जाता है परम परिणामिक भाव की योग्यता जो है वो उसमें रह जाती है परम परिणामिक भाव में उसकी योग्यता रह जाती है। वो जो भाव था वो तो द्रव्यांतर की अपेक्षा से जब प्रकट हुआ तो क्षणिक उपादान से पर का संबंध करके वो शुद्ध रूप से परिणम गया वो उसकी क्षणिक उपादान थी। आज वो 13 गाथा चली थी वो जो भाव होने वाला है वो अपने क्षणिक उपादान से होता है वर्तमान में अपना क्षणिक उपादान है उस प्रकार से स्वतंत्र सटकारक से स्वयं सत से वो उस प्रकार का भाव होता है मगर वो कैसा भाव होता है तो उसमें जो पद्धति समझाई है आचार्य भगवान ने ये भी अमृतचंद्र आचार्य और ये भी अमृतचंद्र आचार्य उसमें भी पर्याय दृष्टि छोड़ के द्रव्य दृष्टि कराने की बात है और इधर भी पर्याय दृष्टि छोड़ के द्रव्य दृष्टि कराने की बात है। बात तो सब एक ही है जिनागम का जो सार है वो पर्याय दृष्टि छोड़ और द्रव्य दृष्टि कर तो ही वितरकता देने को होगी। तो वो जो पद्धति है वो थोड़ी अलग प्रकार की है कि उसमें वो द्रव्य है वो पर्याय का उपादान करता भी नहीं है और निमित्त भी नहीं है निमित्त करता भी नहीं तो क्षणिक उपादान है वो उसका उपादान है और पूर्वकर्म का जो संबंध है वो उसमें निमित्त है। इस प्रकार से वो उपादान और निमित्त पर्याय का उससे भिन्न अपने आत्मद्रव्य को दिखा के वो भूतार्थने का विषय है वो उसको तू जान तो वो समय दर्शन तेरे को प्रकट होगा। इस प्रकार से वो पर्याय की दृष्टि छोड़ के द्रव्य दृष्टि कराने की बात है। इधर क्या है कि तेरे चैतन्य सामान्य में समस्त व्यक्तियां निमग्न है जितनी भी पर्याय जो तीन काल में प्रकट होने वाली है उस सब पर्याय तेरे द्रव्य में निमग्न है तो जो द्रव्य में जैसी निमग्न है उस अनुसार वो पर्याय प्रकट होती जाएगी। तेरी अंदर में द्रव्य में तेरी योग्यता ही निमग्न है उसमें तो कुछ कर्म का संबंध नहीं है तो कर्म के संबंध से होने वाले जो औदिक भाव औक्षमिक भाव श्रोषण भाव औक्षायिक भाव वो उसमें नहीं होंगे ये तो परंपराणिक भाव उससे ही रहेगी मगर जो प्रकट जब होगी तब वो द्रव्यांतर की अपेक्षा से होगी। तो इस प्रकार से वो द्रव्यांतर की अपेक्षा से होने वाली जो पर्याय है तो उसको नहीं देख क्योंकि वो इसमें सब निमग्न है। द्रव्य की जब दृष्टि देखनी है द्रव्य की दृष्टि करनी है तो द्रव्य की दृष्टि छोड़ के फिर ये पर्याय की दृष्टि करने की जरूरत नहीं पर्याय को देखने की जरूरत नहीं क्योंकि वह द्रव्य में सब पर्याय निमग्न है। जिसमें जैसे इसमें उत्पाद वाली पर्याय क्रमबद्ध होती जाती है ऐसे ही इसमें ये इसका परिवर्तन होता जाता है, योग्यता होगा जैसे काल के प्रवाह अनुसार इसके साथ में वर्तता हुआ जो द्रव्य ने उसमें वो भविष्य की योग्यता है वो वर्तमान होती जाती है और वर्तमान की योग्यता है वो भूत में चली जाती है। इस प्रकार से वो तो तेरे द्रव्य को ही देख, तेरे द्रव्य को देख कि उसमें समस्त व्यक्तियां निमग्न है। आचार्य भगवान समझा रहे हैं चित सामान्य जो तेरा है वो पर्याय मात्र से रहित, तो चित सामान्य में चैतन्य की समस्त व्यक्तियां वो निमग्न पड़े हैं, तो उसको ही तू देख कि इसमें जिस प्रकार की क्रमानुसार प्रकट वो योग्यता निमग्न है वो अभी वर्तमान में ही है। भूतकाल में तो अनंत पर्याय आके चली गई तो ये भूतकाल में नहीं है, वो सब पर्याय अभी वर्तमान में है और भविष्य में अभी आने वाली है, अभी आई नहीं, उत्पाद रूप नहीं हुई, वो अभी विद्यमान है, फिर भी अभी वर्तमान वो जो अपना परम प्राण है उसमें तो अभी ही विद्यमान है। ये तीनों काल की पर्याय है, ये अमुक कितनी भूतकाल की पर्याय रूप से है और कितनी भविष्य की पर्याय रूप से है। इस प्रकार की योग्यताएं इसमें अभी वर्तमान में अक्रमे एक ही समय में वो निमग्न रूप से रहा करती है। तो तेरा कर्तव्य क्या है, तो ये इसके ऊपर तू दृष्टि है तेरी, एक एक पर्याय जो व्यक्त प्रकट होती जाती है तो उसके ऊपर तेरी दृष्टि है कि मेरे को ये भाव आ गया, मेरे को ये क्रोध क्रोध आ गया, मेरे को मान आ गया, अभी अभी ये नहीं करना चाहिए तो उसके उसको पलट के शुभ भाव करना चाहिए, ऐसी तेरी मान्यता है। फिर वो शुभ डाल के नहीं ये शुभ भी नहीं करने जैसा है, सम्यक दर्शन करने जैसा है, आत्मज्ञान करने जैसा है, ऐसी तेरी दृष्टि पर्याय ऊपर पड़ी है, उसकी कर्ता बुद्धि पर तेरी पड़ी है। मगर इधर कहते हैं ये क्रमबद्ध होता है, ये तो एक सिद्धांत है, ये और एक सिद्धांत बताते हैं। सब सिद्धांत का प्रयोजन एक ही है कि वो द्रव्य की दृष्टि पर, तो अनेक प्रकार के सिद्धांत से वो समझाते हैं। तो इसमें ये क्या सिद्धांत समझाते हैं कि तेरे द्रव्य में सब योग्यताएं पड़ी हुई है, तो भूतकाल की योग्यता है जो पड़ी हुई है और भविष्य की योग्यता भी पड़ी हुई है, तो तेरे को द्रव्य की ही दृष्टि करनी है, वो पर्याय तो उसके अनुसार होती जाएगी जैसे वो क्रमबद्ध होती जाती है, तो उसकी कर्ता बुद्धि तो छोड़ और अपने द्रव्य ऊपर दृष्टि कर। इस प्रकार से वो पर्याय दृष्टि छोड़ के क्रमबद्ध में क्या क्या उसमें वो प्रयोजन सिद्ध करना है गुरुदेव बता रहे हैं, क्रमबद्ध करके जीव का आकर्ता बना सिद्ध करना है। तो पर्याय जो होती रहती है उसका इस प्रकार से जान के, वो क्रमबद्ध होती जाती है इस प्रकार से जान के उसकी दृष्टि छोड़ के वो अकर्ता द्रव्य स्वभाव की दृष्टि कराने का प्रयोजन है। इसमें वो थोड़ी अलग प्रकार से वो बता रहे हैं कि चित सामान में तेरी चैतन्य सर्व व्यक्तियां निमग्न है, जैसी वो निमग्न है उस अनुसार वो पर्याय प्रकट होती जाएगी, जैसी जैसी योग्यता को उसमें परिवर्तन होता जाता है। इस प्रकार से वो तो अनाधिकार से पड़ी हुई है, उसमें कोई पुरुषार्थ नहीं है, पुरुषार्थ नहीं करना है, वो तो एक स्वाभाविक पर्याय है, जैसे कारण सुख पर्याय स्वाभाविक पर्याय है, इस प्रकार से ये जो अपना क्रम है उसमें निमग्न पर्याय का वो भी स्वाभाविक रूप से पड़ा हुआ है। तो जिस प्रकार की योग्यता का काल पकता जाता है उस प्रकार से वो पर्याय इधर उत्पाद व्यय में क्षणिक अपनी स्वतंत्र योग्यता से क्षणिक उपादान से वो प्रकट होती जाती है, तो प्रकट होती है तब वो द्रव्यांतर की अपेक्षा से वो अनेक प्रकार के भाव रूप से परिणम जाती है स्वतंत्र उपादान से। मगर अंदर में क्या होता है कि अंदर में ऐसा कैसा रहता है, उसमें कुछ उदयिक भाव आता है वो जाता है ऐसा नहीं, उसमें उदयिक भाव भी नहीं है, उसमें उपशम भाव भी नहीं है, सूक्ष्म नहीं है, क्षायिक नहीं, कुछ नहीं है, मगर वो पारिणामिक भाव रूप से है। मगर पारिणामिक सब योग्यता है, चारे भाव की योग्यता है वो परम पारिणामिक भाव रूप से ही है, मगर उसमें इस प्रकार की योग्यता है कि जिस प्रकार का भाव आने वाला है इस प्रकार की योग्यता वाला वो जीव है, वो निमग्न पर्याय है तो वो उसमें रहती है। इस प्रकार से जो निमग्न पर्याय है इसको तू देखेगा तो ये उस अनुसार ये पर्याय प्रकट होती जाती है, तो तेरे को द्रव्य ऊपर से दृष्टि छोड़ के उसके ऊपर उपयोग लगाने की जरूरत नहीं है। द्रव्य की ऊपर से जो चित सामान्य का आलंबन तुमने किया वो चित सामान्य का आलंबन करके वो उसमें ऐसा विश्वास कर दिया कि मेरी सब पर्याय इसमें निमग्न है, तो तेरे को उस व्यक्त होने वाली पर्याय के ऊपर दृष्टि करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें योग्यता पहले से पड़ी हुई है, उस अनुसार ये पर्याय होती जाएगी, जैसी जैसी योग्यता है उस प्रकार की वो पर्याय प्रकट होती ही जाएगी। तो तेरे को तो ये द्रव्य ऊपर ही देखना है और इसका विश्वास करना है कि ये चित सामान्य में चैतन्य की सर्व व्यक्ति निमग्न है, इसलिए वो अव्यक्त है, और अव्यक्त है इसलिए वो चोखा बोला देगा, तीसरा बोल यदि जैसा है ऐसा ख्याल में आ जावे और ऐसे अपना निर्णय की दृष्टि हो जावे, उसका ख्याल हो जावे, उसका विश्वास हो जावे, तो उसके बाद में क्या होगा कि क्षणी व्यक्त में आत्मा नहीं हूं, ये एक की पर्याय प्रकट हुई, ऐसे ऐसे तो अनंत पर्याय प्रकट हो गई और भविष्य में अनंत पर्याय आने वाली है। तो अनंत तीनों काल की पर्यायों का जो अपना समूह है उसमें एक पर्याय जो प्रकट है और उसके ऊपर दृष्टि है कि मेरे को ये बाबा गए, ये बाबा गए, इसको ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी अभी ये सब जा रहे हैं, उसका प्रयोजन क्या है कि तेरे में सब पर्याय एक साथ में अक्रम में निमग्न है, पर्याय एक ही प्रकट है, वो वर्तमान में है और भूतकाल की और भविष्य की पर्याय तो अभी नहीं है, मगर तेरे जो द्रव्य स्वभाव है उसमें तो सब पर्याय अभी है। तो जिसमें सब पर्याय निमग्न है ऐसे द्रव्य ऊपर तू दृष्टि करेगा, तुझे करनी चाहिए या एक पर्याय प्रकट है उसके ऊपर तेरी दृष्टि करनी चाहिए। और उसमें क्या है कि भविष्य में तो भव्यति होमा, एटले कि मारा अपने को तो अपने का अपना द्रव्य का सोचना चाहिए कि मेरे में भविष्य में प्रकट होने वाली अरियंत और सिद्ध की अनंत पर्याय निमग्न है। भूतकाल की पर्याय चली गई है, वो भूतकाल से भविष्य काल तो अनंत होना है, अभी थोड़े काल में ही ये साधकों के सिद्ध पर्याय प्रकट होने वाली है, मैं भव्य जीव हूं और मेरे को गुरुदेव का सत्समागम हो गया है, गुरुदेव की वाणी मैंने सुनी है, वो गुरुदेव की वाणी मेरे को बैठ गई है, इसलिए मेरा अल्पकाल में वो अरियंत और सिद्ध पर्याय होने वाली है। तो इस प्रकार की योग्यताएं इसमें निमग्न है, अरियंत और सिद्ध पर्याय की योग्यता इसमें अनंत काल तक जितनी पर्याय में भूत में चली गई उससे तो अनंत गुणी पर्याय सिद्ध की आने वाली है। तो एक पर्याय जो अभी प्रकट है उसके ऊपर मैं पर्याय दृष्टि होकर उसमें मूड हो या मेरे द्रव्य स्वभाव में जब ये ऐसी ऐसी पर्याय पड़ी हुई है उसकी मैं दृष्टि करूं, पर्याय दृष्टि छोड़ो और द्रव्य दृष्टि करो, ये सब शास्त्रों का सार है, वो गुरुदेव कहते हैं। मगर द्रव्य दृष्टि कैसे होगी, पर्याय दृष्टि छोड़ना है वो बात बराबर है, मगर पर्याय दृष्टि कब छूटेगी, वो उसमें ही सब अपना वैभव रखता है और उसमें ही सब दिखता है, वो व्यक्त है और अपना द्रव्य जो है वो तो अव्यक्त है, उसका तो परिचय है नहीं, उसका ज्ञान नहीं है, उसका अनुभव नहीं है। तो अपना अपना द्रव्य है उसकी दृष्टि करो, तो इसमें क्या बात है, कितना वैभव है, वो सब अपने को खोल के फिर वो देखना पड़ेगा। तो ये सब दिखाते हैं, अनंत गुणों का वैभव दिखाते हैं, उसमें कारण शुद्ध पर्याय का वैभव दिखाते हैं, ये निमग्न पर्याय का वैभव दिखाते हैं, ऐसा वैभव दिखा के फिर उसको अभेदपण दृष्टि में लेना है, ये ज्ञान उसको जानता है और उसकी महिमा करने के लिए वो खोल के देखना पड़ेगा पहला, वो देखता है कि मेरे में क्या क्या है, फिर ऐसा देखता है तब उसको उसकी महिमा आती है और तब वो पर्याय की महिमा छूटती है। ऐसे कहने से या विकल्प करने से वो पर्याय की महिमा नहीं छूटेगी, या द्रव्य का खाली अपरिपण विकल्प करने से कि नहीं मैं तो अपरिणामी निष्क्रिय शुद्ध न्यायिक भाव हूं, वो ऐसा कहिए ऐसा ही, पर पहले उसको खोलो कि कैसा है, उसमें क्या क्या वैभव बना हुआ है, उसमें भेद पड़ जाएगा ऐसा मत सोचो, वो उसको खोलो, वो खोल के देखो कि उसमें क्या है।
तो इस पर काली को खोला तो शुद्ध शुद्ध पर्याय पर
वो द्रव्य ऐसा बता रहे हैं, चित सामान्य में सब पर्याय निमग्न है, वो उस प्रकार का द्रव्य मिला अपने को, सर्वज्ञ भगवान ने देखा है, उसकी वाणी में आया है, आचार्य भगवान समझा रहे हैं, तो ऐसा समझा रहे हैं कि इसमें चित सामान्य में चैतन्य की सर्वव्यक्तियां निमग्न है, वो मेरे को जो भविष्य में पर्याय होने वाली है, भूतकाल की पर्याय से भविष्य अनंत पूरा है, तो सिद्ध पर्याय अनंत निमग्न है। गुरुदेव कहते हैं कि तेरे पेट में अनंत सिद्ध भगवान विराजमान है, तो ऐसी द्रव्य की दृष्टि करूं या अभी जो राजदेश वाली पर्याय जो है छदमस्त पर्याय उसके ऊपर मैं दृष्टि करूं, इसी ऐसे जो पर्याय अपना द्रव्य का जो महिमा आएगी अपना द्रव्य इस प्रकार से देखेगा तो उसके बाद में वो सीधा ही यही बोलाएगा क्षणिक व्यक्ति मात्र की, वो कैसी भी पर्याय होवे उसमें सुभाव की पर्याय होवे, शुद्ध की पर्याय होवे, औश्रम की पर्याय होवे या मुनि दशा की पर्याय होवे या केवल ज्ञान की पर्याय होवे, मगर वो क्षणिक व्यक्ति मात्र है, एक क्षणिक व्यक्ति मात्र पर्याय है, उसके ऊपर से वो दृष्टि हट जाएगी। इस प्रकार का द्रव्य यदि उसको ख्याल में आएगा और उसका विश्वास करेगा तो उसकी महिमा इतनी आ जाएगी कि उसका सीधा बोल उनको आ जाए, ये जोड़ा है, ये सब जोड़े की बात चल रही है ना, सब जोड़ा है जोड़ा है जोड़ा है, तो ये तीन और चार नंबर का जोड़ा है, इस प्रकार का द्रव्य जब दृष्टि में लेगा तो क्षणिक व्यक्ति मात्र में नहीं हूं, ये क्षणिक व्यक्ति मात्र जो ऊपर की दृष्टि है उसको छोड़ के वो अपने द्रव्य की दृष्टि हो जाएगी। तो क्षणिक व्यक्ति मात्र ऊपर से अपनी दृष्टि छोड़ने के लिए और अव्यक्त अपना द्रव्य है कैसा वो समझाने के लिए ये बात उसमें कही हुई है। उपरोक्त भूत तथा भावी भविष्य वर्तमान में अक्रमे रेली निमग्न पर्यायों को द्रव्यांतर की अपेक्षा बिना की स्वाभाविक द्रव्य पर्याय कहते हैं, जो परंपरागत भाव रूप से होती है। तदनुसार व्यक्त होने वाली उत्पाद वे पर्याय को द्रव्यांतर की अपेक्षा वाली वैभाविक पर्याय कहने में आती है। जो उदयिक भाव आदि चार पर्याय है वो चार भाव रूप से होती है। ये बात जो है वो तत्वानुशासन रामसेन आचार्य का तत्वानुशासन है उसमें गाथा 192 में ली हुई है। अथवा भाविनो भूता स्वपर्याया तदात्मका आसते द्रव्य रूपेण सर्व द्रव्येषु सर्वदा। ये सब पंडितों को मालूम होगा इसका अर्थ कि ये भूत और भविष्य की जितनी पर्याय जो प्रकट होकर व्यय होगी वो भी द्रव्य में विद्यमान है। आसते द्रव्य रूपेण सर्व द्रव्येषु सर्वदा, इसमें इसका अर्थ करके वो अष्ट सहस्त्री का वो उसका आधार देके वो सब समझाया है कि ये जो अंदर की पर्याय है वो द्रव्यांतर की अपेक्षा, उसमें तो कुछ द्रव्यांतर की अपेक्षा नहीं है, तो वो भले योग्यता इस प्रकार की होवे मगर वो तो परंपरागत भाव रूप से ही रहती है, मगर वो जो उस अनुसार जो पर्याय प्रकट होगी वो द्रव्यांतर की अपेक्षा होगी, तो वो सब वैभाविक पर्याय कही जाती है। तो इसमें से जो पर्याय प्रकट होगी वो वैभाविक पर्याय है, ये जो पर्याय प्रकट होती है वो वैभाविक पर्याय है, मगर अंदर में जो रही हुई योग्यताएं हैं वो परंपरागत भाव से होने वाली स्वाभाविक पर्याय है। जैसे कारण शुद्ध पर्याय को स्वाभाविक पर्याय कहा है, तिर्यच नारक देव नर पर्याय वैभाविक है, पर्याय कर्म उपाधि वर्जित तो वो स्वाभाविक भाग्य है, इसको भी स्वभाव पर्याय कही। इसमें ये जो आधार है तत्वानुशासन में उसको इसको भी स्वभाव पर्याय कही, ये जो निमग्न पर्याय है वो सब स्वाभाविक पर्याय है, परंपरागत भाव से रही हुई पर्याय है। उत्पादी वाली पर्याय है वो वैभाविक पर्याय, उत्पादी वाली पर्याय जब प्रकट होती है वो द्रव्यांतर की अपेक्षा से उसको देख सकते हैं, मगर जो निमग्न पर्याय है उसमें कुछ द्रव्यांतर की अपेक्षा नहीं है, उसके वो स्वाभाविक पर्याय है। उस क्रमानुसार उस जो जो प्रकार की योग्यता क्रमानुसार वो जो उत्पादी वाली पर्याय प्रकट होगी वो पर के संबंध करेगी या उसका संबंध छोड़ेगी, इस प्रकार से उसमें चार प्रकार के भाव प्रकट हो जाते हैं। तो वो सब पर्याय है वो वैभाविक पर्याय है और अंदर में रही हुई सब पर्याय है वो स्वाभाविक पर्याय है। इस प्रकार से ये तीसरा बोल अभी अपना खत्म हुआ। तो चौथा बोल तो उसके सेट में उसमें आएगा कि क्षणिक व्यक्ति मात्र में नहीं हो, भूतकाल और भविष्यकाल की अनंती पर्याय वर्तमान में बढ़ते हुए द्रव्य में निमग्न है, ऐसे महिमावान द्रव्य का जब निर्णय होता है तब वर्तमान में प्रकट हुई एक पर्याय की दृष्टि छूट जाती है, भाव में सहजे ऐसा भास जाता है कि क्षणिक व्यक्ति में नहीं। चैतन्य के नूर का पूर्व अंदर में जो है वो अपना ध्रुव परमात्मा है, परंपरागत भाव है, दृष्टि का विषय है, वो चैतन्य के नूर का पूर्व अंदर में बन रहा है, भले अंदर में इस प्रकार की योग्यता हो वे और कारण शुद्ध पर्याय हर एक समय में वर्ती रहे वर्तमान 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 वर्तमान, मगर वो चैतन्य के नूर का पूर्व और परंपरागत भाव ऐसा कैसा विद्यमान रहता है, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वो ऐसा कैसा ध्रुव 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 का प्रवाह देव कैसा है, जैसे पानी का प्रवाह ऐसा बहता जाता है वो ऐसा ध्रुव प्रवाह जो है वैसा का ऐसा ही बहता जाता है, ऊर्ध्व प्रवाह बोलते हैं। ऊर्ध्व प्रवाह जो उत्पाद उसमें उत्पाद होता है और व्यय होता है ऐसा नहीं होता है, उसमें कुछ कर्म की संबंध की है और अभाव की अपेक्षा नहीं होती है, वो सकल निरावरण है, वो इस प्रकार से वो द्रव्य वर्तता जाता है, वो भूतार स्वभाव अपना ज्ञायक भाव जो है तो पर्याय मात्र से रहित है मगर उसमें इस प्रकार से वो वर्ता जाता है। चैतन्य के नूर का पूर्व आनंद का कर्ण ऐसा अपना आत्मा द्रव्य दृष्टि है तो अपरिणमन स्वरूप है, वो उत्पाद भी उपरिणमन नहीं होता है इसलिए वो अपरिणमन स्वरूप है। पर द्रव्य तो द्रव्य में प्रवेश नहीं, पर के संग से प्रकट होने वाले रागादि भाव उसका जिन्हें बीजा बोल मां भावक भाव कहा वो भी उसमें प्रवेश नहीं, अरे सुधात्मा द्रव्य ना अवलंबन थी प्रकट की शुद्ध पर्याय हो भी उत्पाद भी वाली होने से वो ध्रुव स्वभाव में उत्पन्न नहीं होती है, ऐसा टंकोत्कीर्ण चैतन्य भी अपना जो द्रव्य स्वभाव है वो ऐसा कैसा रहने वाला जो अपना द्रव्य स्वभाव है वही एक आश्रय करने योग्य वही आलम्बन करने योग्य और वही एक दृष्टि का विषय है, और द्रव्य सत और पर्याय सत भिन्न है कथनचित भिन्न है। दृष्टि अपेक्षा से सर्वथा भिन्न कह सकते हैं, ज्ञान की अपेक्षा से वो कथनचित भिन्न और कथनचित भिन्न है। स्वतंत्र षटकारक से उत्पन्न होने वाली क्षणिक पर्याय रूप से मैं नहीं होता हूँ, इसलिए मैं अव्यक्त द्रव्य हूँ, एक क्षणिक व्यक्ति मात्र नहीं हूँ। एक क्षणिक व्यक्ति मात्र जो प्रकट होके वही होती जाती है, वो उस रूप में नहीं होता। निष्क्रिय शुद्ध पारिणामिक 320 का अर्था में जो निष्क्रिय शुद्ध पारिणामिक इस प्रकार का आधार आया है उसकी व्याख्या करते हैं कि निष्क्रिय फोर्थ कि वो रागादि भाव रूप भी नहीं होता है और शुद्ध भावना परिणति वो चैतन्य शुद्ध रूप पर्याय रूप से भी नहीं परिणमता। इस प्रकार से रहा हुआ जो अपना निष्क्रिय शुद्ध परम पारणिक भाव है वो ही दृष्टि का विषय है। इस प्रकार से वो एक समय की पर्याय रूप से नहीं होता है, क्षणिक पर्याय रूप से नहीं होता है। इस प्रकार का अपना परम पारणिक भाव है वो ही अव्यक्त द्रव्य है, वो ही आश्रय करने योग्य है, वो अनंत महिमावंत है। वो पर्याय की दृष्टि इसमें वो छूट जाती है और अनंत महिमामय मन अपने द्रव्य की वो दृष्टि हो जाती है। इस प्रकार से अपने द्रव्य को दृष्टि में लेने के लिए ये सब विशेषण करके वो अपना वैभव खोल के वो अचार्य को समझा रहे हैं।
हाँ।